एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे अंदर ही है, लेकिन पूरी तरह अदृश्य है। हम सबने ये शब्द सुने हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये क्या है? क्या ये सिर्फ किशोरावस्था से जुड़ी कोई चीज है, या हमारी रोजमर्रा की थकान, चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि आधी रात को मीठा खाने की इच्छा, क्या इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है?
आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और इस सफर में हमारे गाइड होंगे मार्टिन लक। उनकी किताबें हॉर्मोन्स ऑर्केस्ट्रेटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वाइटैलिटी और हॉर्मोन्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारी चर्चा का बेस बनेंगी।
अच्छा।
और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये केमिकल मैसेंजर हमारे शरीर के इस विशाल ऑर्केस्ट्रा को कैसे चलाते हैं
और क्यों आज के दौर में ये ऑर्केस्ट्रा इतना बेसुर हो गया है। और ये सवाल आज बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम सब पहले से ज्यादा थके हुए हैं, ज्यादा तनाव में हैं। डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, ये सब कितना आम हो गया है।
बिल्कुल।
तो क्या इन सब का जवाब हमारी आधुनिक जीवन शैली में छिपा है जो हमारे अंदर की प्राचीन केमिस्ट्री से टकरा रही है?
हाँ, आज हम इसी अदृश्य दुनिया को समझकर अपनी सेहत की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने का रास्ता खोजेंगे।
तो चलिए सबसे पहले लेखक मार्टिन लॉक के बारे में बात करते हैं। उनका नजरिया इस विषय पर काफी अनोखा है ना? वो इसे सिर्फ एक मेडिकल विषय की तरह नहीं देखते।
बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं है। हाँ, वो एक बायोकेमिस्ट हैं। उन्हें 2 दशकों से ज्यादा का क्लिनिकल रिसर्च का अनुभव है और वो नॉटिंघम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। लेकिन उनकी सबसे खास बात ये है कि वो इन जटिल वैज्ञानिक सच्चाइयों को कहानियों के जरिए, उदाहरणों के जरिए समझाती हैं।
अच्छा।
वो हार्मोन को शरीर के पुर्जों की तरह नहीं बल्कि किरदारों की तरह देखती हैं जिनकी अपनी अपनी भूमिका है।
मैंने पढ़ा कि इस विषय में उनकी इतनी गहरी रुचि के पीछे एक व्यक्तिगत कहानी भी है।
हाँ, उन्होंने खुद अपनी जवानी में गंभीर हार्मोनल समस्याओं का सामना किया था और जब पारंपरिक इलाजों से उन्हें निराशा हुई तो उन्होंने खुद इस पर शोध करना शुरू किया।
सही कहा, शायद इसीलिए उनके काम में गहरी समझ और सहानुभूति दिखती है।
इसकी छाप उनके काम में साफ दिखती है।
तो सिर्फ क्या और कैसे नहीं समझाते?
नहीं, वो क्यों पर जोर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि एक बगीचे की तरह है जिसे सही देखभाल की जरूरत होती है।
तो इन किताबों के जरिए मार्टिन लक का सबसे बड़ा आइडिया, उनका मुख्य तर्क क्या है?
उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हार्मोन सिर्फ केमिकल मैसेंजर नहीं है। वे हमारे शरीर के अदृश्य संचालक हैं, एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह।
ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर?
हाँ, वे हमारे मूड, हमारी सोच, हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक व्यवहार को भी कंट्रोल करते हैं।
वो कहते हैं कि हम अक्सर लक्षणों का इलाज करते रहते हैं। नींद नहीं आ रही, वजन बढ़ रहा है,
बाल झड़ रहे हैं।
बिल्कुल।
जबकि असली गड़बड़ तो कंडक्टर के साथ हो रही होती है।
लेकिन आमतौर पे तो लोग हार्मोन को सिर्फ रिप्रोडक्शन से जोड़कर देखते हैं, है ना?
और लक इसी धारणा को सबसे पहले तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये सोचना वैसा ही है जैसे आप कहें कि बिजली का काम सिर्फ एक बल्ब जलाना है,
जबकि बिजली तो पूरा घर चलाती है।
एग्जैक्टली। इसी तरह आज की ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं, मोटापा, थायराइड, डिप्रेशन, ये असल में हार्मोनल असंतुलन का ही नतीजा है।
और सबसे बड़ी बात,
ये है कि ये असंतुलन जेनेटिक से ज्यादा हमारी जीवन शैली और हमारे पर्यावरण से प्रभावित होता है।
ये बात सुनने में तो बहुत सशक्त लगती है कि जीवन शैली जेनेटिक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर कई लोग कहेंगे कि डायबिटीज या थायराइड तो उनके परिवार में चलता आ रहा है। इस जेनेटिक पहलू को हम कैसे समझें?
ये बहुत अच्छा सवाल है। लक कहते हैं कि जेनेटिक्स एक भरी हुई बंदूक की तरह हो सकते हैं।
अच्छा।
लेकिन उस बंदूक का ट्रिगर हमारी जीवन शैली दबाती है।
मतलब
आपके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री हो सकती है जो आपको उसके प्रति संवेदनशील बनाती है, लेकिन खराब खानपान, तनाव और नींद की कमी वो ट्रिगर है जो उस जीन को ऑन कर देते हैं।
अच्छा, तो नियंत्रण काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है।
बिल्कुल।
ठीक है, तो अगर ये इतने जरूरी हैं तो ये अदृश्य चीजें काम कैसे करती हैं? चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं।
लक एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है,
हाँ,
वो एक हाई स्पीड टेलीफोन नेटवर्क जैसा है। तेज, सीधे एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल पहुंचाता है, जैसे आपने गर्म चीज को छुआ और हाथ तुरंत हट गया.
राइट.
वहीं एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारा हार्मोन सिस्टम एक रेडियो ब्रॉडकास्ट की जैसा है.
रेडियो ब्रॉडकास्ट.
हाँ, ये खून के जरिए केमिकल संदेश यानी हार्मोन भेजता है. ये संदेश धीरे धीरे पहुंचते हैं लेकिन उनका असर बहुत व्यापक और लंबे समय तक रहता है.
तो अगर ये रेडियो सिग्नल की तरह हैं तो इन्हें हर कोई नहीं सुनता होगा. मेरा मतलब ये संदेश सही जगह कैसे पहुंचते हैं?
बिल्कुल सही. यहाँ लॉक एंड की यानी ताला चाबी का सिद्धांत काम करता है.
अच्छा, ताला चाबी वाला.
हाँ, हर हार्मोन एक चाबी की तरह है जो केवल अपने खास रिसेप्टर यानी ताले पर ही फिट होता है और ये ताले हमारी टारगेट कोशिकाओं पर मौजूद होते हैं.
ओके.
इसीलिए इंसुलिन लिवर की कोशिकाओं पर काम करता है, दिमाग की नहीं, क्योंकि लिवर की कोशिकाओं के पास इंसुलिन के लिए सही ताला है.
तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गलत चाबी गलत ताले में लग जाए या कोई बाहर से आकर हमारे तालों के साथ छेड़छाड़ कर दे?
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है.
अच्छा,
आगे हम जब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की बात करेंगे तो देखेंगे कि वो ठीक यही काम करते हैं, नकली चाबियां बनकर हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं. लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि शरीर इस सिस्टम को कंट्रोल कैसे करता है. इसके लिए एक शानदार सिस्टम है जिसे नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं.
नेगेटिव फीडबैक लूप.
इसे घर के थर्मोस्टैट की तरह समझें.
थर्मोस्टैट.
हाँ, जब कमरा ठंडा होता है तो हीटर चालू हो जाता है और जैसे ही कमरा सही तापमान पर पहुंचता है हीटर अपने आप बंद हो जाता है.
ठीक है, समझ गया.
इसी तरह जब शरीर में एक हार्मोन का स्तर जरूरत के हिसाब से बढ़ जाता है तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि इसका उत्पादन अब बंद कर दो. इसी संतुलन को होमियोस्टेसिस कहते हैं.
और जब ये बिगड़ता है तब प्रॉब्लम होती है.
बिल्कुल. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के दौर में इंसुलिन के साथ देखने को मिलता है.
मैं हमेशा इंसुलिन को सिर्फ शुगर या डायबिटीज से जोड़कर देखता था, लेकिन आप कह रही हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है.
लखा कहते हैं इसे मास्टर मेटाबॉलिक हार्मोन कहते हैं. ये सिर्फ ब्लड शुगर को ही कंट्रोल नहीं करता बल्कि ये शरीर में सूजन, दिमागी कामकाज और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है.
बाप रे.
आज के दौर में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक महामारी की तरह है. मतलब जब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से सुन नहीं पाती.
और ये कई समस्याओं की जड़ है.
हाँ, मोटापे से लेकर PCOD और दिल की बीमारियों तक. और ये सीधे तौर पर हमारे खानपान से जुड़ी है.
और तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल का क्या? इसका नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं. लगता है यही सारी समस्याओं की जड़ है.
यहाँ लाका कहते हैं कि कॉर्टिसोल रक्षक भी है और भक्षक भी.
रक्षक भी और भक्षक भी.
हाँ, इसका असली काम हमें तनावपूर्ण स्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करना है. सोचिए, पुराने जमाने में जब इंसान के सामने कोई जंगली जानवर आ जाता था तो एड्रेनलिन उसे तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के लिए तैयार करता था, जबकि कॉर्टिसोल लंबे समय तक उस तनाव से निपटने के लिए शरीर को ऊर्जा देता था.
अच्छा.
समस्या तब होती है जब आधुनिक जीवन शैली का तनाव, ट्रैफिक, डेडलाइंस, सोशल मीडिया कभी खत्म ही नहीं होता. तब कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है और जो रक्षक था वही शरीर को अंदर से खाने लगता है.
और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उनका काम भी क्या सिर्फ प्रजनन से आगे जाता है?
बहुत आगे. ये हमारे मूड, मेटाबॉलिज्म, हड्डियों की सेहत और हमारी दिमागी क्षमता पर भी गहरा असर डालते हैं.
लग समझाते हैं कि कैसे जीवन के अलग अलग चरणों में, जैसे किशोरावस्था
या फिर मेनोपॉज.
हाँ, या फिर मेनोपॉज और एंड्रोपॉज के दौरान इनका संतुलन बदलता है. और ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक और भावनात्मक बदलाव भी लाता है. तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में एक बहुत ही प्राचीन और समझदार सिस्टम है. लेकिन मार्टिन लक का एक बड़ा तर्क ये भी है कि हमारी आज की दुनिया इस सिस्टम के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ रही है.
बिल्कुल.
ये कैसे हो रहा है?
इसके दो बड़े कारण हैं और दोनों ही चौंकाने वाले हैं. पहला है एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स यानी EDCs.
EDCs.
ये वो केमिकल हैं जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को हैक कर लेते हैं. और चौंकाने वाली बात ये है कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं आते.
तो फिर
आपके घर में जो नॉनस्टिक पैन है, कैशियर से मिलने वाली थर्मल प्रिंटिंग वाली रसीद, प्लास्टिक की बोतलें, यहाँ तक कि कुछ एयर फ्रेशनर्स और कॉस्मेटिक्स में भी ये केमिकल मौजूद हो सकते हैं. हम इनसे हर रोज घिरे हुए हैं.
एक मिनट, मेरे बटुए में रखी रसीद, वो मेरे हार्मोन पर असर डाल सकती है? ये कैसे मुमकिन है?
हाँ, क्योंकि ये केमिकल शरीर में जाकर असली हार्मोन की नकल करते हैं. ये उन ताला चाबी वाले सिस्टम में नकली चाबियां बनकर घुस जाते हैं. ये या तो किसी हार्मोन के काम को ब्लॉक कर देते हैं या फिर गलत समय पर गलत सिग्नल भेज देते हैं. नतीजा, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है,
जिससे थायराइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
थायराइड, प्रजनन क्षमता और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी गंभीर समस्याएं।
ये तो वाकई डरावना है। और दूसरा बड़ा कारण क्या है?
दूसरा कारण हमारी दिनचर्या से जुड़ा है। ये है हमारी सर्केडियन रिदम,
शरीर की 24 घंटे वाली घड़ी।
हाँ, शरीर की 24 घंटे की प्राकृतिक घड़ी का बिगड़ना। हमारा शरीर हजारों सालों से सूरज के उगने और ढलने के चक्र के हिसाब से बना है, लेकिन आज हम देर रात तक नीली रोशनी वाली स्क्रीन देखते हैं,
सही समय पर सोते नहीं
और दिन में प्राकृतिक रोशनी में कम रहते हैं। ये सब हमारी बॉडी क्लॉक को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है।
अच्छा, तो इसका मतलब मेरा देर रात तक फोन चलाना सिर्फ मेरी नींद ही नहीं बल्कि मेरे मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस लेवल को भी सीधे सीधे बिगाड़ रहा है। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं।
बिल्कुल, यही घड़ी मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन और कॉर्टिसोल जागने का हार्मोन जैसे हार्मोनों को सही समय पर रिलीज करने का काम नियंत्रित करती है।
और जब ये घड़ी बिगड़ती है
तो पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा ही बेसुर हो जाता है। आप गलत समय पर भूखा महसूस करते हैं, गलत समय पर थका हुआ महसूस करते हैं, और आपका शरीर मरम्मत का काम ठीक से नहीं कर पाता।
अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वे क्या होंगी?
पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है हार्मोनल इंटरकनेक्टेडनेस, यानी सभी हार्मोनों का आपसी जुड़ाव।
सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है।
हाँ, कोई भी हार्मोन अकेले काम नहीं करता, वे एक नेटवर्क हैं। इसीलिए जब आप तनाव में होते हैं, मतलब कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो आपको मीठा खाने का मन करता है,
जो इंसुलिन को प्रभावित करता है।
बिल्कुल, और आपकी नींद खराब होती है क्योंकि मेलाटोनिन गड़बड़ाता है। सिर्फ एक लक्षण का इलाज करना अक्सर विफल रहता है क्योंकि जड़ कहीं और होती है।
दूसरा बड़ा संदेश जो हमने पहले भी छुआ था, जीवन शैली जेनेटिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सही बात है।
हमारे जीन हमें कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें, हमारा खान पान, हमारी नींद, हमारा व्यायाम उन जीनों को ऑन या ऑफ करने का स्विच दबा सकती हैं।
मतलब हमारे हाथ में बहुत कुछ है।
हाँ।
और तीसरा, भोजन सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि सूचना है।
सूचना।
हाँ, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं और हार्मोनों को एक संदेश भेजता है। प्रोसेस्ड शुगर और जंक फूड शरीर को सूजन और तनाव का संदेश देते हैं,
जबकि सब्जियां और प्रोटीन उसे मरम्मत का संदेश देते हैं।
बिल्कुल, हर भोजन हमारे हार्मोनों के लिए या तो दवा का काम कर सकता है या जहर का।
और अंत में ज्ञान ही शक्ति है। अपने शरीर के काम करने के तरीके को समझकर हम अपनी सेहत की गाड़ी के ड्राइवर बन सकते हैं, न कि सिर्फ एक पैसेंजर।
सही कहा, जो बस साथ चल रहा है और इस बात से अनजान है कि गाड़ी गलत दिशा में क्यों जा रही है।
लक की किताबों में कुछ पंक्तियां बहुत यादगार हैं, जैसे एक जगह वो कहते हैं, आपके हार्मोन आपकी नियति नहीं है, वो आपके लिए एक अवसर है।
ये बहुत प्रेरणादायक है। ये हमें महसूस करने से रोकता है कि हम अपनी समस्याओं के शिकार हैं। इसके बजाय ये हमें अपनी सेहत को बेहतर बनाने, उसे ऑप्टिमाइज करने की शक्ति देता है। ये कहता है कि आप अपने हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं।
एक और विचार जो मुझे बहुत पसंद आया, नींद डाउन टाइम नहीं है, ये वो समय है जब आपकी हार्मोनल रिपेयर टीम काम पर लगती है।
वाह,
ये हमें नींद को प्राथमिकता देने का एक बहुत शक्तिशाली कारण देता है। हम अक्सर नींद को काम से चुराया हुआ समय मानते हैं, जबकि असल में वहीं पर शरीर की असली मरम्मत होती है।
और शरीर की तुलना एक सिम्फनी यानी संगीत गोष्ठी से करना।
हाँ,
जिसने हार्मोन सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं बल्कि कंडक्टर, संगीत और कॉन्सर्ट हॉल सब कुछ है। यह दिखाता है कि वे हमारे अस्तित्व के लिए कितने मौलिक और सर्वव्यापी हैं। अगर एक भी वाद्य यंत्र बेसुर हो जाए तो पूरी सिम्फनी खराब हो जाती है।
तो ये सब जानने के बाद श्रोता इन जानकारियों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? कुछ सरल और व्यवहारिक सुझाव?
बिल्कुल, पहला और सबसे आसान कदम है अपनी सर्केडियन रिदम को ठीक करना।
वो कैसे?
सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के लिए प्राकृतिक धूप में बाहर जाएं, चाहे बादल ही क्यों ना हो।
अच्छा,
ये आपके आंखों के जरिए आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि दिन शुरू हो गया है। ये आपके कॉर्टिसोल को सही समय पर जगाएगा और रात में नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बनाने में मदद करेगा।
और खाने की आदतों के बारे में क्या? क्या उसमें भी कोई छोटा बदलाव कर सकते हैं?
हाँ, देर रात खाने से बचें। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें।
इसका क्या फायदा है?
जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर को मरम्मत और सफाई का काम करना होता है, ना कि भारी भोजन पचाने का। ये छोटा सा बदलाव आपके इंसुलिन को स्थिर करता है और आपकी नींद की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार करता है।
और तनाव के लिए कोई छोटा सा उपाय? आजकल तनाव तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है।
जब भी तनाव महसूस हो, बस एक मिनट के लिए रुकें और गहरी धीमी सांसें लें। एक आसान तरीका है बॉक्स ब्रीदिंग।
बॉक्स ब्रीदिंग,
4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें, 4 सेकंड तक बाहर छोड़ें और 4 सेकंड तक फिर रुकें। ये छोटा सा अभ्यास तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आता है और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल की प्रतिक्रिया को कम करता है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारा शरीर कितना बुद्धिमान और आपस में जुड़ा हुआ है।
हम अक्सर स्वास्थ्य को अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, पेट की समस्या, नींद की समस्या, मूड की समस्या।
बिल्कुल, जबकि ये सब एक ही हार्मोनल सिम्फनी के अलग अलग सुर हो सकते हैं। हमें पूरे ऑर्केस्ट्रा को सुनने की जरूरत है, ना कि सिर्फ उस एक वाद्य यंत्र को जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हम खुद कितने शक्तिशाली हैं। हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए किसी जादुई गोली या बाहरी इलाज का इंतजार करने के बजाय अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे सार्थक बदलाव करके खुद को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। हमारा शरीर हमेशा संतुलन की ओर लौटना चाहता है, हमें बस उसे सही माहौल और सही मौके देने हैं।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, ये जानते हुए कि हमारा आधुनिक वातावरण हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ने वाले तत्वों से भरा है जिन्हें हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, वो एक सबसे शक्तिशाली आदत कौन सी है जिसे हम अपने नियंत्रण में रखकर अपने हार्मोनल सिस्टम का सबसे अच्छा समर्थन कर सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।